सार का जो शुद्ध भाव अधिकार है उसकी गाथा नंबर 38 चल रही है, तो वह गाथा 38 में पृष्ठ क्रमांक अपना जो 31 है प्रवचन रत्न चिंतामणि का, उधर पर हम चलते हैं आगे। यहां पर मूल बात हमने देखी थी, जो जीवादि सात तत्व है इनको यहां परद्रव्य कहने में आया है, और परद्रव्य होने के कारण उनको यहां उपादेय नहीं है यानी हेय है ऐसा कहने में आया है, और वो क्यों कह रहे हैं इसका इस बात का विशेष खुलासा हम देख रहे हैं। पहले ये तो है कि जीव का स्वभाव जो है वह तो अनादि अनंत काल का है, और जीव का स्वभाव अनादि काल का होने के कारण यहां पर ये कह रहे हैं ये जो पर्याय रूपी जो सात तत्व गिने हैं वे स्वभाव में नहीं है, इस अपेक्षा से उनको परद्रव्य कहने में आया। अब दे दो उनको किसका उन्होंने लाए हैं, ठीक है चलो जाने दो, ऐ दोनों में देखेंगे। इंद्रिय ना फैलावनी व्याख्या काले करी हती ने ते विचार तो घना वक्त पेला आ 31वीं गाथा सिवाय नो, एटले श्री समयसार जी ने 31 गाथा में कहेला भाव सिवाय नो आवेलो के आ नग्नपणु कहूं ते शू छे, नग्न होई कोण होई शके થઈ શકે, ત્યારે એ વિચાર આવ્યો હતો કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહપણું દ્રષ્ટિમાં તો છે, યાને ઇન્દ્રિયો કે વિષય મેં લલચાના નહીં યે તો શ્રદ્ધા મેં તો થા પહેલે, કબ ચૌથે ગુણ સ્થાન મેં ક્યાં કહા કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહપણું દ્રષ્ટિમાં તો છે, દ્રષ્ટિ અને યહાં શ્રદ્ધા મેં લેના, પરંતુ હવે જેને સ્થિરતામાં અસ્થિરતા છૂટીને યાને અભી જબ તીન કષાય ચોકડી કા અભાવ હો જાતા હૈ તો સ્વરૂપ મેં સ્થિરતા અધિક બઢતી હૈ, તો કહેતે સ્થિરતામાં અસ્થિરતા છૂટીને એટલે સ્થિરતામાં વધારે સ્થિરતા થઈને ઇન્દ્રિય નિગ્રહપણું થઈ ગયું છે તેને નગ્નપણું હોય છે, देखो ये तो बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे यह जीव एक कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करता है और उनके जो संज्वलन कषाय बाकी रहते हैं वो भी कषाय कैसे, तो शास्त्र में उसका ऐसा वर्णन किया जैसे पानी में हम लकीर खींचते हैं, वो जैसे लकीर बस दिखती निकल जाती है, वैसे इनके कषाय आते हैं और निकल जाते हैं, वो कषाय लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होते हैं। जैसे मान लो हमारे तुम्हारी बात करें तो हमको किसी ने 5 साल पहले हमारा इंसल्ट किया हो तो भी हमें अभी भी ख्याल में रहता है, किसी के शादी में कुछ गड़बड़ी हुई हो तो 50 साल बाद भी बोलता है कि तूने पहले लड़की को 5,000 रुपया क्या डाउरी दिया और मुझे, मैं 1 साल पहले शादी किया था और मेरे को कुछ नहीं और उसके बाद 5,000 भाव बढ़ गया, ऐसा तो 50,000 साल की बात ध्यान रखता है, ख्याल में है। तो ये क्या बताना चाहते हैं, ये जो कषाय है वो लॉन्ग स्टैंडिंग वाले 50,000 साल तक रुके, 50 वर्ष तक, और कई कई जीवों के तो बहु बहु तक चलते हैं, ख्याल में है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय है, बहुत काल जो स्थायी रहते हैं। अब यहां कहते हैं कि ये जो संज्वलन कषाय है वो संज्वलन कषाय तो कैसा है कि बस आया और निकल गया, मुनिराज को ऐसी इच्छा हो गई कि अभी मुझे आहार लेना है, आहार को निकलते हैं और हो सकता है कि उनको उन्होंने जैसी आंकड़ी ली हो यानी जैसा निग्रह किया हो कि ऐसे ऐसे टाइप में मुझे कोई खाना खिलाने वाला आहार देने वाला कोई मिले तो मैं लूं, और न मिले एक नहीं दो नहीं 6-6 महीने तक इनको आहार मिलता है फिर भी मन में कोई कषाय बुद्धि नहीं रहती, क्या क्या मूर्ख लोग हैं, एक को भी अक्कल नहीं कैसा आहार देना, ऐसा मन में कतई आता नहीं इनके, बस वो समय निकल गया वो आहार लेने का भाव भी निकल जाता है, इसको संज्वलन कषाय कहेंगे। देखो ये श्रेणी राजा ने उस यशोधर मुनि राज के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग किया, वो उपसर्ग दूर हो गया तब भी उनके प्रति उनको कोई भी ऐसी मन में कोई ऐसी खोटी बुद्धि नहीं रही, उसको भी कहा कि तेरा भी कल्याण हो जाए, और ये तेरा भी कल्याण हो जाए ऐसा जब कहने में आया तो उनको ऐसा लगा कि अरे मैंने इतनी बड़ी इनको तकलीफ दी फिर भी मेरे प्रति जरा भी इनको गुस्सा नहीं है, पलट गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि संज्वलन कषाय क्या चीज होती है, तो ऐसे संज्वलन कषाय जिनमें विद्यमान है ऐसे जीव के अंदर से कषाय उनसे वे नग्न है, कौन से कषाय है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूपी कषाय, तो उनके तो अपने शरीर में एकत्व जरा भी नहीं है, शरीर के प्रति मोह नहीं है, शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, और मैं जुदा हूं और यह शरीर जुदा है ऐसी तो खातरी तो मतलब श्रद्धा तो चौथे गुणस्थान में हुई थी, अभी यहां तो उनके और अंतरंग में स्थिरता है और उससे भेद ज्ञान इतने मतलब अधिक मात्रा में है तो उनको तो बाह्य में जो भी परमाणु का या शरीर का जो भी अवस्था हो उससे कोई लेना देना है नहीं, तो ऐसे जीव को कपड़े रखने के भाव ही नहीं होंगे। ये मुनियों का स्वरूप ही हमें ख्याल में नहीं आता है, हम तो देखते कि अरे रे रे देखो देखो भाई हमें नग्नता आई, मुनि 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 भाई जो तू नहीं है उसमें तेरा मुनिपन कहां है, जो शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर में कहां है क्या मतलब मुनिपना है, मुनिपना जो है वह तो जो अंतरंग में जो स्थिरता रूप जो वीतरागता है उसको मुनिपद कहा है, ख्याल में। तो यहां जो कह रहे हैं नग्न कौन थई शके, ये पहला प्रश्न उठा है ना, गुजराती है त्यारे ए विचार आवे हो तो त्यारे ए विचार आवे हो तो के इंद्रिय निग्रहपणु दृष्टि में तो छे, यानी इंद्रियों से हम हट जाए इंद्रियों के विषयों से हम दूर हो जाए, ऐसी श्रद्धा तो शुरुआत में थी। कब? चतुर्थ गुण स्थान में तो कहे छे, परंतु हवे जेने स्थिरता माए अस्थिरता छूटी ने, इसका अर्थ क्या हो गया? अधिक स्थिरता होने से दो निगेटिव लिया ना, इंद्रिय निग्रोपण थी गयु, यानी इंद्रियों का फैलाव हट गया। अभी ऊपर पहला शब्द है ना, इंद्रिय फैलाव नी व्याख्या काले करी हती ने, तो इंद्रिय का फैलाव यानी क्या? अभी भी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहना वो इंद्रियों का फैलाव है। यानी इंद्रियों का फैलाव यानी ग्रहण इंद्रिय ऐसा लंबा हो जाए, 8 दिन से होने वाला है ना, वैसा इंद्रिय का फैलाव नहीं। अभी अपना पर्यूषण कब चालू होता है? पंचमी से, और चतुर्थी से क्या होगा? अभी समझ में आया? तो वो इंद्रियों का फैलाव नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। इंद्रियों का फैलाव का अर्थ है ऐसा लेना कि इंद्रियों के विषयों में गृद्धता रहना, उसमें अधिक एकत्व बुद्धि रखना, तो वो तो इनके है नहीं। क्या कह रहे? देखो भाई, ये पैराग्राफ इतना बढ़िया है, जितना उसके अंदर से माल निकालो उतना कम है। क्या कहते? देखो, हवे जेने स्थिरता माए अस्थिरता छूटी ने, इंद्रिय निग्रहपण थई गयु छे, यानी स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में भी जिनको कोई अभी ये नहीं रहा, कह रहे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, इसी गर्मी ऐसी गर्मी में कि मेरे हाथ में पानी कम से कम थोड़ी 2 बूंद तो सर पे डालूं, ऐसा नहीं। जैसे हम देखते हैं वो क्रिकेटियर जरा सेंचुरी फेंचुरी मारे, वो पानी पिए हुए नहीं, सिर पे डाले, क्यों? बहुत गर्मी होती है। ऐसे वो इंद्रियों के भी अधीन नहीं है। तो क्या कहते हैं? इंद्रियपणु छूटी गयु छे, तेने नग्नपणु होय छे। पांचे इंद्रियों तरफ नो अस्थिरता नो विस्तार खसी गयो छे, एटले छूटी गयो छे, एटले तेनी दशा एवी, एटले नग्न ज थई जाय छे। तो पहले ऐसा एक विषय आता था कि मुनि नग्न ही क्यों? ये अपने जो मुनि होते हैं वो नग्न ही क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन सबसे ऐसा निबंध लिखवाते थे, तो ये ऐसी बात। तो यहां सारी बात आ गई, उसमें से जितना जिसको और माल खींचता आना चाहिए वो ले लो। काले तो जो के 31वीं गाथा में अर्थ करियो हतो, पर आ विचार तो घना वर्षो पहला आव्यो हतो, 5 इंद्रियों दृष्टि की अपेक्षाए निरोध तो प्रथम थई जाय छे, अने ए तो सम्यक दृष्टि ने होय छे। अर्थात आ जड़ 5 इंद्रियों तो पर छे, परंतु जे खंड खंड रूप इंद्रिय छे तेनो निग्रह थईने जारे अतीन्द्रिय दृष्टि थाय छे त्यारे सम्यक दर्शन थाय छे, अने ए तो चौथे गुणस्थाने होय छे। परंतु मुनिने आ नग्नपणु एटले शुं? अहिया फैलाव शब्द छे ने, तेथी घणा वर्षो पहला आ विचार आव्यो हतो के आ शुं कहे छे के जे चौथे गुणस्थाने ज्ञेय तरीके हतो ते 5 इंद्रियों तरफनो अस्थिरतानो भाव पण जेने टळे छे तेने त्यारे नग्न दशा थई जाय छे, पछी काय कोई परिग्रह रहेतो नथी। आवी स्थिति छे, ओ वस्तुनी स्थिति ज आवी छे, तो कोई परिग्रह रहेतो नथी। जो बात है ना, तो कोई परिग्रह में कितने परिग्रह आते किसको मालूम है? प्रतिभा तो आप जानती हैं, 14। कौन से? सिर्फ 14 है कि कोई अधिक कम जस्ती है? हरीश भाई आप जानते हैं? हाँ, तो दोनों मिलके कितने हो गए? बोलवानू नहीं, हाँ पछी पूछा बात बोलवानू। हरीश भाई आप जानते हैं भाई साहब? हाँ, कितने है टोटल? अंतरंग, शाबाश, अंतरंग परिग्रह 14, बहुत अच्छा। और बहिरंग? जो तुम्हारे हमारे पास है अभी 10। हाँ अभी 10 के नाम बोलो मम्मी। दस अंतरंग हुए तो 10 अंतरंग बताओ हमारा शू है। हाँ बहिरंग परिग्रह मैं बताऊं सोना। हाँ हाँ बरोबर। हाँ क्षेत्र मकान बर्तन वस्त्र बहुत अच्छा दास दासी सोना चांदी और क्या धन धान्य ये तो बहिरंग परिग्रह है। ये बहिरंग परिग्रह कौन रखे कि जिसको अभी अंतरंग परिग्रह है तो अंतरंग परिग्रह कितने फिर हमारी दिव्याबेन बोलेगी जानो छो नहीं जानता नाम नहीं आवड़ता छे अपना पशे हाओ पहला परिग्रह कौन बतावे बेन आप बताना मिथ्यात्व छे ना अपना पास स्टोक में पहला ये विचार करू ना हो तो बहुत सारू हो एम हूं छे पहले में पहला परिग्रह भाई साहब पैसा विसा गिना ही नहीं है ये बाह्य परिग्रह में पैसा का नाम नहीं है ख्याल में आया ऐसा पैसे का परिग्रह नहीं चलो कल से रुपये जमा करेंगे हा? इसके लिए नहीं बताया जा रहा है तो मिथ्यात्व और आगे क्या है क्रोध मान माया लोभ और नौ नौ कषाय यानी मिथ्यात्व प्लस कषाय प्लस नौ नौ कषाय एक प्लस चार पांच और प्लस नौ चौदह अंतरंग परिग्रह यानी जिसके अभी मिथ्यात्व बाकी है यानी जिसको अभी पर पदार्थों के प्रति ममत्व है पर पदार्थों के प्रति एकत्व है उसको मिथ्यात्व है तो उसको तो वस्त्र रखने के भाव होंगे और होंगे ही। तो अभी अधिक बोलने की जरूरत है क्या बेन? हाँ समझदार को इशारा काफी है क्या? क्या बताया देखो यहां क्या कह रहे हैं ये जो अपनी बात हो गई ना फैलाओ 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 का अर्थ क्या कि अभी भी इंद्रियों के यानी पांच इंद्रियों के विषयों में जिनके आसक्ति है जिनमें एकत्व बुद्धि है उनमें बाह्य परिग्रह तो होगा ही होगा। अभी न जानो यहां से हम दूसरे कहीं देश में जा रहे हैं यानी एक गांव छोड़ के दूसरे रास्ते में कुछ खाना नहीं मिले तो जैसे अपन टिफिन लेके जाते हैं ना भातु भातु ले जाए ना वैसा वो नहीं लेके जाते क्या ख्याल में आया? और अभी अभी तो ऐसा हमने सुना है देखा नहीं है कि गाड़ी भर भर के साथ में जाते हैं मोटर फोटो क्या करें। तो जिनके अंतरंग है उनके बाह्य तो होगा ही होगा परिग्रह इसलिए कहते जो अंतरंग से नग्न है यानी कषायों से नो कषायों से मिथ्यात्व से रहित है उसके बाह्य भी परिग्रह नहीं होगा। इसलिए तीन कषाय चोकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता कही जाती है क्योंकि एक कषाय चोकड़ी के अभाव वाला भी कपड़ा पहनता है घर में रहता है खाना खाता है सब लफड़ाबाजी करता है ख्याल में आया? मुनियों में ये बात नहीं होगी मुनियों की अपेक्षा भाई बात ही अलग है मुनिपद क्या होता है। तो कहते हैं कि जो सुखित जीतों जे खंड खंड रूप इंद्रिय छे तेनो निग्रह थईने जारे अतीन्द्रिय दृष्टि थाय छे त्यारे सम्यक दर्शन थाय छे। ये तो सम्यक दर्शन कब होता है उसकी बात बताई अने ये तो चौथे गुण स्थाने होय छे पण मुनिने आ नग्नपणु एटले शू अहींया फैलाव शब्द छे ने तेथी घणा वर्षो पहेला आ विचार आव्यो हतो क्या शू कहे छे कि जे चौथे गुण स्थाने ज्ञेय तरीके हतो ते पांच इंद्रियो तरफनो अस्थिरतानो भाव पण छे ने टळे छे तेने त्यारे नग्न दशा थई जाय छे पछी काय कोई परिग्रह रहेतो नथी। अभी बात समझ में आई? तो चौथे गुणस्थान वाले कौन सा परिग्रह होता है? अरे षटखंड का आधिपत्य होता है 96,000 रानी होती है लड़ाई में झगड़ा करने का भाव होता है फिर भी उसको निष्परिग्रह कहा है। शांति से सुन अपेक्षा जुदी है क्योंकि उनमें इन पदार्थों में एकत्व बुद्धि नहीं है, उनके भी ये सारा कुछ है वो ज्ञान का गेय है। लेकिन अभी जो चारित्र मोहनि कर्म जो बाकी है, या अभी दो कषाय तीन कषाय चौकड़ी का उधर सद्भाव है, उसके कारण वो वहां अभी अटैच्ड है, वो चारित्र मोह बाकी है, दर्शन मोह कल निकल गया। शायिक सम्यक दृष्टि है ना, कौन भरत चक्रवर्ती, भले रानियां हैं उनके, लेकिन वो तो उनके ज्ञान के गेय है, लेकिन अभी जितना राग बाकी है उतना दुखी है, ख्याल में है। तो क्या कहा, पछी काय कोई परिग्रह रहते नहीं, आवी स्थिति छे हो, वस्तु नी स्थिति ज आवी छे, भाई आजे मानो काले मानो, आ वस्तु स्थिति तो बदलवानी नहीं, तमारी मान्यता ना हिसाब थी ये कहीं बदलवानी नहीं, जे छे तेवी तमारी मान्यता था तो तमारू भलू था, लियो भलू करव हो तो आ रस्तो छे एम बतावे छे। आई कहे छे के ते मुनि पांच इंद्रियो थी हट्या छे, वो ते मुनि छे ने, एटले मुनिपना थी वात करे छे। ये पद्म प्रभा मलधारी देव बता रहे हैं ना मुनियों का क्या स्वरूप है, तो वो कह रहे हैं कि पोते मुनि छे ने, कौन पद्म प्रभा मलधारी देव, एटले मुनिपना थी वात करे छे, परंतु तेथी करीने सम्यक दृष्टि नु ध्येय अनादि आनाथी बीजू हो एम नथी, तेमज आवु समकित मुनि ने ज थाय छे एम पण नथी। ए तो टीकाकार पोते मुनि दशा मां छे एटले मुनिपना थी वात करी रहा छे, अने ए तो समयसारनी छठी गाथानी वात काले करी हती ने। अभी उनका क्या है कि सुबह में समयसार चलता होगा और दोपहर में नियमसार चलता होगा, इसलिए दोनों बात मिला के वो बात कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने कहा है वो तो टेप में आया है, टेप में से राइट डाउन होकर यहां शास्त्र में आया है। जैसे हम यहां कभी कभी बोल लेते हैं, अभी हमने प्रवचन स्थान में ये देखा था ना, देखो यही बात यहां है, ऐसा हम बोल लेते हैं ना कभी कभी, तो दो विषय एक साथ चलते हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं उसकी तुलना हो जाती है, कंपेरिजन सहज रूप से हो जाती है। हवे कहे छे के सात तत्व उपादेय नथी, तेथी तेना थी, एटले सात तत्वो थी मुनि एकदम आखा उदास थई जाय छे, सहज वैराग्य रूपी मेलना शिखरनो जे शिखामणी छे। मुनि स्वाभाविक वैराग्य रूप जे मोटो महल छे तेना शिखर उपरना रत्न समान छे, परद्रव्यती जे परांगमुख छे, आ सात तत्वों ने परद्रव्य कया ने, माटे तेना थी जे परांगमुख छे तो कोनी सन्मुख छे, पोताना त्रिकाळी स्वभाव सन्मुख छे, तो आ सात पर्याय तत्वोना परांगमुख छे एम समझाय छे। पांच इंद्रियोना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे। देखो अभी क्या कहा, कषाय तो कुछ नहीं रहे अभी, बस एक अपेक्षा से उनको यहां निष्परिग्रह कहा है। ये जो संज्वलन कषाय है वो नहीं के बराबर है, इसके लिए उसको गाउन करके इनके परिग्रह ही नहीं है, ख्याल में। वैसे देखा जाए तो कषायों में संज्वलन क्रोधमान माया लोग भी आता है और उस अपेक्षा से उनको परिग्रह है, लेकिन वो परिग्रह अभी यहां तो क्या, जैसा देखो 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 देखो, जैसा जो शास्त्र में कथन आता है वो समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में होता है और उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, और उसकी तुलना जब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनियों के साथ कहते हैं तो कहते इसको चारित्र नहीं है, क्या कहा। तो यहां जो पहले गुण चौथे गुणस्थानवर्ती या पहले गुणस्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा मुनियों को इतनी वितरागता है कि उनको उस अपेक्षा से वो संज्वलन क्रोध मान माया लोग है नहीं के बराबर है, इसलिए उनके वो नहीं है कह करके उनको गाउन कर देते हैं। देखो शास्त्र में ऐसी बातें आती हैं। देखो जो बारह अंग की रचना करने वाले गणधर देव होते हैं वो तो कहते हैं कि मेरे जैसा ज्ञानी आपके स्वरूप का क्या वर्णन कर सके, किसको कहेंगे, सर्वज्ञ को। जो सर्वज्ञ भगवान है उनको ऐसा कौन कहता है कि जिन्होंने 12 अंग की रचना की, 11 अंग और 14 पूर्व की, वो ऐसा कहे कि मैं अज्ञानी। तो वो अज्ञानी तो हमारा नंबर कहां लगा, और हम अज्ञानी तो वो निगोदिया जीव कैसा कहां गया, वो कौन सा अज्ञानी। और जो निगोदिया जीव है वो तो उसके कुछ ना कुछ ज्ञान का उघाड़ तो है ना, तो उसके सामने ये जो पुद्गल है वो क्या रहा। जैसे जिसके साथ आप तुलना करते हैं तो वहां वो अपेक्षा ध्यान में रखना। तो यहां उन्हें निष्परिग्रही कहने में आता है, तो वो ऐसा मत समझना कि उनके अभी संजोलन भी नहीं है करके, क्योंकि जितने प्रमाण में उनके अभी कषाय है उतने प्रमाण में उनको बंध भी हो रहा है, और सुख गुण की अपेक्षा देखो तो उतने प्रमाण में भी दुखी है। क्या मुनिराज दुखी? हां है। जो अनंत सुखी है उसकी अपेक्षा से इनका सुख किधर है, ख्याल में आया ना। ये थोड़ी सी तुलना करने को हमें आदत पड़नी चाहिए। तो यहां शास्त्र में जो बात आती है वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल उनको यहां निष्परिग्रह कहा है, क्योंकि जो हमारे तुम्हारे जैसे वाले को जो परिग्रह है उसकी अपेक्षा से वो निष्परिग्रह है। हेलो, क्या कहा? परद्रव्यती जे परांगमुख छे, आ सात तत्वों ने परद्रव्य कहे छे ने माटे तेनाती जे परांगमुख छे, पांच इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे। अभी इनको क्या कह रहे, परिग्रह है कौन सा है साहब? ये देह जो है वो भी उनके लिए परिग्रह। अभी मुनियों को देह है उनके लिए भी परिग्रह का क्यों साहब? और अरहंत को परिग्रह है कि नहीं? इनके तो शरीर है ना, देह मात्र छे ना, तो नहीं उनके नहीं है परिग्रह। फिर मुनियों ने क्या किया? अभी कुछ न कुछ भोजन का भाव, आहार लेने का परिणाम होता है कि नहीं? तो हमारे तीर्थंकरों को भी होता होगा, ऐसे कई भोले जीव मान लेते हैं, क्या करें? उनकी तरफ मत देखना। तो क्या कह रहे हैं कि पांच इंद्रियों ना फैलाव रही देह मात्र जेने परिग्रह छे, एटले जेने मुनि ने खंड खंड इंद्रियनी एकता बुद्धि तो गई छे, परंतु सम्यक दृष्टि ने ज्ञेय तरीके जे अस्थिरता नो भाव छे ते पण टळी गयो छे। तेथी देह ने कोई वस्त्र ना अंशनी कटका थी ढाकवो पड़े ते हवे मुनि नी स्थिति मां होतू ज नथी। क्या कहा? कि वस्त्र ना कटका, कटका यानी टुकड़ा, उससे भी शरीर को ढांके, यानी ऐसे कई लोग होते ना सिर्फ लंगोटी पहनते, वो भी कटका, वस्त्र ना कटका, ए पद जेने होतू नथी। शू कहे कि ते हवे मुनि नी स्थिति मां होतू ज नथी, अस्थिरता रूपे पन पांच इंद्रियो विस्तार पामती नथी, अने तेवो अंदर अतीन्द्रिय स्वरूप में समाई गया छे। अहो मुनि कोने कहे, जैन ना मुनि तो आवा होय छे। आहा हा, मुनि ने देह मात्र परिग्रह होय, एक शरीर ज होय, परंतु वस्त्रनो एक धागो पन न होय। ये तो कलंक और अकलंक और निष्कलंक की कथा तो आप जानते होंगे ना? हाँ नहीं? आज नहीं, अभी पौना घंटा है ना, अपन उसको कट शॉर्ट करेंगे। कभी आएगा टाइम तो बताएंगे क्या है उसमें। डॉक्टर नाराज हो गए क्या? मैं तो बता ही देता हूँ। देखो क्या है, ये दोनों निष्कलंक और अकलंक ये दोनों भाई भाई थे। अब वे मुनिराज थे, मतलब ऐसा उन्होंने सोचा कि हम बौद्ध का अभ्यास करेंगे, बौद्ध धर्मियों का। तो वो ऐसे कोई गुरु के पास गए जो बौद्ध धर्म सिखाने वाले थे, तो उन्होंने कुछ बोलते बोलते ऐसी कुछ गलती कर दी, वो बोर्ड पे जो लिखते हैं, तो दूसरे दिन उनमें से एक ने वहां वो गलती सुधार दी। ये अपना बोर्ड रहता है ना ब्लैक बोर्ड ऐसे, तो वो गलती सुधार दी, तो वो गुरु को ऐसा लगा कि अरे कि ये तो मेरी गलती तो सिर्फ जैनी को ही सुधार सकता है। तो अपने इस ये माहौल में कोई ना कोई एकाध ऐसा होना चाहिए कि जो जैन है, और उनकी तो ऐसी थी कि और किसी को बौद्ध धर्म सिखाना नहीं चाहते थे, और ये बौद्ध धर्म इसलिए सीखना चाहते थे कि उनमें क्या क्या खामी है ख्याल में। तो वो तो जानते थे कि भाई ये जो कोई जैनी होगा वो तो पक्का जैनी है। तो उन्होंने क्या कहा किया, एक भगवान की मूर्ति ऐसी बीच में रख दी और सबको कहा चलो इसको इन्हें टीपी नहीं बजू जाओ, यानी उसको लांग कर अगले तरफ जाओ। तो अभी क्या करें, भगवान की मूर्ति को लांगना कितना बड़ा पाप है। इसलिए हमारे मंदिर भी ऐसी जगह होते हैं कि जहां ऊपर से कोई चले नहीं, ऐसा होता है ना मंदिर हल में। घबराना मत, अपने ऊपर भी यहां कोई जाता नहीं है। इतना तो विवेक बिल्कुल रखा हूं मैं, अब आगे की बात। तो फिर अभी इनका नंबर आ गया, फिर उन्होंने क्या किया, अपने रूमाल में से एक धागा अरंत क्या रखेंगे, तो वो अरंत अवस्था नहीं रही, ये तो परिग्रह सही हुआ। तो एक धागा रखे तो देव नहीं, और पूरी बोलने की जरूरत है, आंगी रखो हा? तो यहां क्या कहते, देखो देखो ये बात कहां से आई, हाँ हाँ, मुनि ने देह मात्र परिग्रह होई छे, एक शरीर जोय परंतु वस्त्रों एक धागो पन न होए। अरे मुनि नो एक धागो नहीं होए तो भगवान की बात क्या अभी भाई। तो मुनि का ऐसा स्वरूप है, वो तो अभी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जीव है, और वे तो तेरहवें गुणस्थान, डबल द गुणस्थान, उनकी कैसी अवस्था होगी, कैसा उनका दिव्य स्वरूप होगा। ख्याल में आया, तेमने धागो न होए तेनु कारण आ छे के पांच इंद्रियोनी चढ़ा चढ़ता रूप अस्थिरता पण टळी गई छे, एटले आखा आत्मा में अतीन्द्रियपनु प्रकट थई गयु छे। लियो आ एनु नाम मुनि छे। ये अभी इसके आगे मैंने जो कथा बताई उसके आगे भी बहुत लंबी कथा है, वो अभी छोड़ देते हैं वहीं पर, अपना तो काम हो गया ना धागे वाले का। हाँ, लियो आ एनु नाम मुनि छे, परंतु अंदर भान न मळे ने एकला नग्न थईने फरे तो ते मुनि नथी एम कहे छे। अंदर भान न मळे एटले पोताना स्वरूपनो वेदन न होय, सम्यक दर्शन न थाय, अने एकलो नग्नपना करे, शू कीधुं, एकला नग्न थईने फरे तो ते मुनि नथी एम कहे छे। ऐसा जब वस्तु का स्वरूप उन्होंने बताया, किन्होंने, स्वामी जी ने, तो बात तो ऐसी हो गई कि पहले संप्रदाय से छूटे थे उस संप्रदाय वाले भी इन पे नाराज हुए थे, अरे ऐसा करके, और यहां आए और उन्होंने असलियत बताई तो इधर वाले भी लोटपोट हो गए, यानी गर्म हो गए। तो उनको तो ना इधर का ना उधर का, लेकिन वो अपने में स्थिर रहे। ख्याल में आया, देखो कैसा उनका, मतलब क्या कहे अभी उनके बारे में, इतनी विशेषता है उनमें कि किसी के सहारे रहना हो ऐसी बात नहीं। नग्न थईने फरे तो ये मुनि नथी एम कहे छे। आ तो गई काले रामजी भाई बोले हता ने कि एकत्रीसमी गाथा, तेमने समय सामने एकत्रीसमी गाथा याद करी, एटले ते गाथा थी इंद्रियना फैलावनी वात करी, नहींतर मारो भाव एकत्रीसमी गाथा थी आ वात कहेवानो नहोतो, समझाणू काय, मारे तो अंदर थी वात आवी हती क्या नग्नपणू एटले शू। मुनि ने एक के वस्त्रनो कटको केम नहीं, आहा। तो अभी वो स्वयं तो धोती पहनते थे और लोग उनको महाराज कहते थे, लेकिन वो कहते थे हमें तुम्हारा नाम है तो क्या बोलते हैं, एक मिनट, श्रावक छी, ऐसा भी कभी नहीं बोलते थे कि मैं मुनि हूं करके, ख्याल में आया। हाँ, आ मुनि ने अतीन्द्रिय दशा थई गई छे, एटले कोई पन इंद्रिय ना भाग ने ढाकू ए तेमने होई शकेज नहीं, तेमने बधी इंद्रियो खुली थई गई छे, अने आवा जैन ना साधु होई छे, एम कहे छे। छड़ाला मां नथी आवतुं के भूम माही पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन करण, याने ये क्या है, मुनिराज जो होते हैं वो भूमि पर ही सोते हैं, ऐसा उसके ऊपर कोई कपड़ा डाले या कोई ऐसा बिछौना बनावे ऐसा कुछ नहीं, और वो जहां उनकी शाम हो गई हो और जहां पर वो रुके हो वहीं पर भी ऐसा, अरे इधर बहुत पत्थर है इधर ये, ऐसा नहीं करेंगे, अपने हाथ में पीछी होगी वो पीछी का काम ऐसा झाड़ू मार के सब सफाई करे ऐसा नहीं करेंगे, वो तो बस खाली ऊपर से पीछी इसलिए फिरा दे कि वहां कोई जीव जंतु की हिंसा न हो, और जैसा है वहीं पर भूमि माही पिछली रहनी में, याने जो रात्र होती है उसके उत्तर रात्र में, याने समझ लो कि सुबह सुबह जैसा, पिछली रहनी में कछु शयन एकासन करे, याने वो भी एकासन याने एक ही आसन पर, ऐसा नहीं। हाँ अभी क्या है, हिंदी में मैं नहीं बोल पा रहा हूं, एक करवट पर ही सोते हैं, ऐसा 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 या ऐसा नहीं सोते, क्योंकि ऐसा आदमी सोए तो बहुत टाइम सोता है, और एक ही करवट पर सोए तो जल्दी उसको नींद खुल जाती है, क्योंकि देखो कोई मुनिरा दो दो तीन तीन घंटा सोए ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेन, मालूम है अपना, हाँ बोलो बेन, केम केम, हाँ आप जानती बेन, डॉक्टर साहब आप, हाँ बोलो, हाँ एक अंतर मुहूर्त में, हम बड़ा अंतर मुहूर्त लेते हैं 48 मिनट वाला, और उसमें अगर वो आत्मानुभव नहीं करेंगे तो उनका मुनिपद नहीं रहेगा, वो आपने आखिरी बात सही बताई, कारण क्या है कि देखो एक अंतर मुहूर्त में तो हजारों बार, ये छोटा अंतर मुहूर्त, हजारों बार छठे में सातवें, छठे से सातवें, सातवें से छठे ऐसा झूलते हैं, और जब नींद करते होंगे तब तो अधिक काल सोएंगे नहीं, और अधिक काल सोएंगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, वे ऐसा मुनि का स्वरूप है भाई, एक एक बात देखो, हम 28 मूलगुण की एक एक ऐसी बात हम देखेंगे तो पता लगता है कि मुनि का स्वरूप क्या है, हमें तो 28 मूलगुण है कि 27 है इसकी भी पता नहीं, और 28 के नाम तो वो मुनि जाने, हमारा क्या काम, थोड़ी मुनि, हमको क्या है को मालूम करना, ऐसा नहीं है भाई, तुझे जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते का पता होना चाहिए, ख्याल में आया। तो यहां हम किसी को ये ऐसा है उसकी बात नहीं है, पर 28 मूलगुण के नाम तो याद रखो, हा? तो जो कुछ कहने में आ रहा है, जिसके बारे में हम पूछ रहे समझ रहे चिंतन कर रहे वो तो हमारे ख्याल में आ जाए, तो क्या कहते, देखो कहां गया वो, भूमि माही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण, यानी एक ही करवट पर सोते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए, दो दो पांच पांच घंटे के लिए नहीं, गाथा पांच छठी ढाल रात्रि ना पाछला भाग मां एक आसने पौनी सेकंड निद्रा मुनि ने होई जे, यहां तो पौनी सेकंड की बात कर रहे हैं, वाह, जो एक सेकंड की निद्रा तेमने आवी जाए तो मुनि नु गुणस्थान रहे नहीं, आवा मुनि ने आवो आत्मा उपादेय छे एम अहिया केमू छे, ये तो हम स्थूल दृष्टि से कह रहे हैं, अंतर मुहूर्त की जो बात है ना, ये तो पौनी सेकंड वाली भी बात हो सकती है, वो कह रहे यानी हमें उनको मानना पड़ेगा। हाँ, छोटा सा अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है ना, तुम्हारे हमारे हिसाब से नहीं है, उनको है, फिर आत्मानुभव करेंगे, फिर सो जाएंगे, हो ना? हाँ, वो तो अन्याय हो गया, मैं समझ गया। उनकी जो ऐसी हालत है उसको कौन क्या करे बताओ, हमें कैसा लगता है कि कैसा हो सकता है ऐसा, पर है ऐसा वस्तु का स्वरूप। अभी हमारा अज्ञान था तो हम बोल रहे कि भाई पौने घंटे के लिए, क्योंकि हमको जास्ती नींद लेने की आदत है ना। अभी हम कर्णानियोग पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये जो दर्शन मोहन दर्शनावरणी कर्म जो है उसमें से पहले पहले जो अधिक गाढ़ निद्रा वाले जो है ना कर्म, वो छूट जाते हैं। ऐसे आगे आगे जैसे जाएंगे वो कम कम होते जाते हैं। वो बारहवें गुणस्थान तक भी होता है निद्रा और प्रचला का, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उनको निद्रा होती है, कर्म है वहां।
अभी जो परीक्षा है मैट्रिक की या कोई फाइनल एग्जाम, तो पूरी रात रात जागते ना, सोते नहीं बच्चे, और नींद आए तो चलते रहते और पढ़ते रहते। हमारी मोना तो पूरा एक पूरी रात जागे और दूसरे दिन जाके पढ़ ली। तो जिसको अभी आत्मा की लगन लगी है उसको कहाँ से नींद आए, भले लेटे हो तो भी वो चलता रहेगा, उन्हें नहीं, वो नींद नहीं होगी उनकी। लेटना अलग बात है और नींद अलग बात, वैसे तो सामयिक ही चलता रहता है।
हमें तो हमेशा अपने हिसाब से ही वस्तु का स्वरूप है ऐसा लगता है, लेकिन जो है वो है। और मैं तो ऐसा नहीं समझता कि गुरुदेव जो कह रहे हैं उसमें कोई, हाँ है भाई ऐसी ही बात है, उसमें कोई आगा पीछा मत समझना। नहीं विश्वास होता तो दो दिन से होगा, उसमें क्या तकलीफ है। हाँ चलो, नहीं नहीं, नहीं। जो एक सेकंड में निद्रा तेमने आवी जाए तो मुनिपनु मुनिनु गुणस्थान रहे नहीं, आवा मुनि ने आवो आत्मा उपादे छे एम अहिया केवू छे, तेमने देह मात्र परिग्रह होय छे। काले श्रीमद्जी ना अपूर्व अवसर माती कहू हतु ने कि मात्र देह ते संयम हेतु होय, जो ये देह भी जो है वो संयम के लिए उसका उपयोग हो, संयम नो हेतु हो, ख्याल में आया। मात्र देहते संयम हेतु होय जो अपूर्व अवसर ये वो क्या रे आवसे, ऐसा उन्होंने लिखा है। श्रीमद जी ये पोते कहू छे के मुनि ने देह मात्र निमित्त होय छे, बस आहा हा, मुनि ने निमित्त रूप एक देह मात्र परिग्रह रही जाय छे, केम के ते आयुष्य पूर्ण थया विना छूटतो नथी, जारे बाकी बधु तो छूटी जाय छे। याने शरीर तो जब तक मुनिपना है वो तो रह गए, बाकी सब छूट गया, लेकिन शरीर तो अभी है, इसलिए उसको शरीर देह मात्र परिग्रह है ऐसा बताया है। जे परम जिन योगीश्वर छे, परम जिन अर्थात वस्तु स्वरूप में पूर्णानंदनो नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा, उसको कहा परम जिन अने तेमा जोड़ानी दशा जेमने परम उग्र थई गई छे, ते परम जिन योगीश्वर छे। लियो आ संतनी एटले जैनना संतनी व्याख्या, क्या जैन संत की व्याख्या की है कि जो वस्तु स्वरूप में पूर्णानंद का जो नाथ है त्रिकाली भगवान आत्मा, उसमें जो परम स्थित हो गए हैं, जोड़ानी दशा तेमने परम उग्र थई गई छे, एवा ने परम जिन योगीश्वर कीधा छे। आहा हा, जैनना संत एटले ज साचा संत हो, ते सिवाय कोई क्या एक साचा संत होई शके नहीं, जैन परमेश्वर नी मुनिपनानी विधि ने रीत सिवाय कोई ठेकाने साचा मुनि थई शके नहीं। प्रश्न, तीन मिनट है। दखल ही लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकणमो सदा देतो। बोलो जिनवाणी माता की। कल भी शाम का अपना यही टाइमिंग रहेगा।